ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा भी होती है और बृहस्पतिवार को आज बाबा ने कहा वृक्षपति, तो शिव बाबा का दिन है। वृक्ष का बीज शिव बाबा है, उसका दिन है। और ड्रामा अनुसार आज 5 जून आज अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस है, इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण को केवल सुरक्षित ही नहीं रखना है परंतु स्वच्छ भी रखना है। तो स्वच्छ रखने के लिए कहा जाता है ना, वृक्ष को काटो मत, क्योंकि जैसे कहा जाता है जल जीवन है, वैसे वृक्ष भी जीवन है, क्योंकि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार भी वृक्ष काटने लिए मना करती है, कहाँ कहाँ रोड बनाने लिए वृक्ष बीच में आता है तो काटते हैं, लेकिन फिर जड़ों सहित काटते हैं। विदेशों में तो जड़ों सहित काट लेते हैं, यहाँ भी होगा, और जाकर के दूसरी जगह ठीक जगह पर रोप लेते हैं। तो वृक्ष नष्ट नहीं होता, क्योंकि इतने पुराने वृक्ष होते हैं, कई तो 100-200 साल पुराने होते हैं, इतने मजबूत होते हैं और कितनी छाया देते हैं। तो बाबा भी वृक्षपति बन करके इस वृक्ष का पूरा हमें ज्ञान देते हैं। तो जब वृक्ष पुराना हो जाता है, जड़जड़ी भूत हो जाता है, फिर उसके ऊपर बीज आ जाता है। तो बाबा भी बीज है इस वृक्ष का, कल्प वृक्ष का, और उस बीज में सारे झाड़ का ज्ञान है। तो आज बाबा ने कल्प वृक्ष को भी याद किया है। और बाबा क्यों आते हैं, कई उत्तर होते हैं, लेकिन हर मुरली में अलग अलग उत्तर होता है बाबा क्यों आते हैं। आज बाबा ने कहा है मैं आता हूँ अपने बच्चों को राजाई देने, राजाई देने। देखो भगवान को अपने बच्चों को राजाई देने आना होता है। राजाई दी थी कल्प पहले, फिर वो राजाई गंवा दी, फिर अभी राजाई देने आता है, आया है। तो राजाई कैसे मिलेगी, तो बाबा ने कहा पढ़ाई से। दुनिया में कहीं भी पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। पिता राजा होता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस राजगद्दी का मालिक बनता है पिता के बाद, फिर उसका बच्चा। कहाँ भी पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती, लेकिन ये ऐसा ईश्वरीय ज्ञान है जहाँ पढ़ाई से राजाई मिलती है। पढ़ाई और फिर राजयोग, राजयोग ज्ञान और योग, इनसे ही तुम राजाई लेते हो। तो आज बाबा ने इस पर भी बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 5/6/2025 है। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। भगवान क्यों आते हैं, बेहद का सुख देने लिए, उसके लिए बेहद की नॉलेज देते हैं। तो बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो, पढ़ाई और योग उससे राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। पढ़ाई तो निराली है ही है, ये स्कूल भी निराला ही है, परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं और दोनों दिखाई नहीं देते, तो स्कूल भी निराला, पढ़ाई भी निराली, पढ़ाने वाला भी निराला, और फिर बाबा कहते ये ईश्वरीय परिवार है, कुटुंब है, तो ये कुटुंब भी बहुत निराला है। किस हिसाब से निराला है? यहाँ सब प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी इसमें क्लास में बैठे होंगे, यहाँ बैठे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी है क्लास में, बच्चे भी बैठे हैं। और फिर चलो शरीर में आयु बड़ी है, लेकिन कोई कहेगा मैं 8 दिन का बच्चा हूँ, कोई कहेगा मैं 1 महीने का बच्चा हूँ, पर बड़े बच्चे हैं, पर 8 दिन के और 1 महीने के सब बैठे हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ये निराला स्कूल है, निराला परिवार है। इस पढ़ाई, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा स्कूल जो बाप ने खोला है, अपने बच्चों के लिए खोला है, अपने बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा। हाँ बाबा आत्मा कहती है ना, तो आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। पिता है ना, तो पिता अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं, माँ भी सुनाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, पर्यावरण दिवस आया वो भी वर्ष वर्ष मनाते हैं, भाई 5 जून ये दिन फिक्स है विश्व पर्यावरण दिवस का, तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो, वृक्षपति का दिवस तुम हर, बाबा कहते बृहस्पति डे पर मनाते हो, गुरुवार को मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज चैतन्य तो झाड़ भी चैतन्य, और वो चैतन्य बीज इस वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वो तो सब जड़ होते हैं, वो सुना नहीं सकेंगे अपने उस वृक्ष की कहानी। ये है चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और ये वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है, हर चीज की अवस्थाएं भी 4 होती है, सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर पांचवा भी होता है तमो प्रधान, पर उस तमो प्रधान और सतो प्रधान का वो संगम हो जाता है। तो बाबा कहते हर चीज 4 भाग में होती है, ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया तो कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। नई शिक्षा कहते हैं ना, तो ये शिक्षा है एकदम नई, इस दुनिया के लिए नहीं है, कलयुगी दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए ये शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है, अब सिखाएंगे कोई दूसरी भाषा में थोड़ी सिखाएंगे, हिंदी में ही सिखाएंगे। बाबा ने समझाया है, हाँ भाषा तो हिंदी है, तो बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। राजाएं आए ना, अब हर एक स्टेट की भी अपनी भाषा है, तो हर चीज का वो नाम में भी फर्क पड़ जाता है। कोई सब्जी होती है हम राजस्थान में कोई और नाम देंगे, गुजरात में कोई और नाम देंगे, साउथ इंडिया में कुछ और नाम देंगे, तो अलग ही है ये। हम देखते विदेशों में देखो, हम कहते हैं भगवान, वो कोई कहेगा गॉड, परंतु आप जर्मनी में जाइए, वो गॉड भी नहीं कहते हैं, वो डॉइश या वो कुछ उस प्रकार से नाम देते हैं। अपनी भाषा में भगवान को भी अलग अलग नाम देते हैं। वैसे तो दुनिया में तो भाषाएं भी बहुत है, तो नामों में भी वो वही चीज होगी, पर वैरायटी है नाम। तो बाबा कहते हैं, देवी देवता बनने के लिए ये नई शिक्षा है। भाषा तो हिंदी ही है, तो बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। अब सतयुग में क्या भाषा होगी? कोई नया राजा आया तो अपने वो सिक्के भी अपने बनाएगा, क्या नहीं, सब कुछ नया बनाएगा। अब सतयुग में भाषा कौन सी होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि यज्ञ के अंदर जब 14 साल भट्ठी में थे तो संदेशियां ध्यान में जाती थी और बात भी करती थी, लेकिन वो जब बात करती थी तो कई शब्द समझ में नहीं आते थे, क्या बोल रही है, क्योंकि वहां की भाषा में स्पष्ट है सब कुछ। यहाँ संस्कृत में देखो एक शब्द के कितने अर्थ है, हिंदी में भी एक शब्द के कितने अर्थ होंगे, लेकिन वहां की भाषा इतनी सरल है। दो शब्द तो सबको याद है ना, तो केश चिलकारी और दंत चिलकारी, टूथब्रश, ये दातुन या टूथब्रश को कहते हैं दंत चिलकारी सतयुग में, और केश चिलकारी बालों की कंघी को, केश चिलकारी बना, केश तो बालों को कहते हैं, फिर उससे जो कंघी करते हैं तो चमक आती है, तो चिलकारी माना उससे जैसे चमक आती है, दांतों को भी ब्रश करते हैं तो चमक आती है, तो वो नाम ऐसे होते हैं जो उसके लिए ठीक है, वो फिर दूसरे को नहीं देंगे। पर यहाँ एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, और संस्कृत में तो बहुत ही अर्थ होते हैं एक शब्द के। तो बाबा कहते हैं, सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। अब वहां कोई संस्कृत तो नहीं है सतयुग में, देवनागरी शब्द बोलते हिंदी जैसी है, पर देवनागरी देवताओं की भाषा। हाँ, बाबा कहते हैं वहां कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है, कलयुग की भाषा सतयुग में नहीं चलेगी, वहां की भाषा ही अलग होगी। तो संस्कृत तो द्वापर युग के बाद आई ना, कोई सतयुग में संस्कृत भी नहीं थी। जो यहाँ है वो फिर वहां नहीं हो सकती सतयुग में। तो बच्चे जानते हैं ये है वृक्षपति, उनको फादर रचयिता भी कहते हैं झाड़ का, ये है चैतन्य बीज रूप, वो सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने कारण मनुष्यों को सुख नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कागविष्ठा समान सुख मिलता है। लौकिक पढ़ाई पढ़ी, चलो कोई डिग्री ले ली, नौकरी कर ली, उससे कमाई थोड़ी बहुत हुई, तो बाबा कहते अल्पकाल का सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से हर एक चीज फिर से, ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम ही सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा ले रहे हो। ये भी तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर एक बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्मा ही भी है, वो बाप भी निराकार है तो बच्चे भी निराकार है, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, शिव बाबा का अलौकिक जन्म है, अपना शरीर नहीं है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते, पर काया ऐसे प्रवेश करे और ज्ञान देवे, एक नया जन्म हो जाए। बाबा कहते हैं ये मनुष्य की बात नहीं है, जैसे ये लेते हैं और इनकी भी, अब ये भी एक नया जन्म हुआ इनका, शिव बाबा ने प्रवेश किया तो इनका भी नया जन्म हुआ, जो बाबा के बच्चे बने उनको भी नया नाम मिला, मानो नया जन्म मिला। तो बाबा कहते हैं जैसे ये लेते हैं और इनकी भी वान परस्त अवस्था में प्रवेश करते हैं बाबा, तो बच्चों यानी आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। जो शिव बाबा के बनते हैं उनको फिर बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, परमात्मा पिता है, गॉड है, तो सब जानते हैं। तो कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वो तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। अब बाबा है पिता है तो अपने बच्चों को बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। अभी तो कितने बाबाएं हैं, बहुत हाँ, कई बाबाएं हैं। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, बापू गांधी जी को भले बापू कहते थे, फादर ऑफ द नेशन, लेकिन भारत का निर्माण थोड़ी किया, भारत तो पहले से ही था, चलो अंग्रेजों को भगाया, अब तो भारत का फिर बापू कहते हैं। ऐसे ही तो बाबा कहते हैं, यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी का मेयर होता है, वो हेड है म्यूनिसिपैलिटी का, उसको कहते हैं सिटी फादर, सिटी फादर, उस शहर का फादर, क्योंकि उसको सफाई का ध्यान रखना है, ये सब जो हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, तो इसलिए सिटी फादर। तो म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वो फादर सब है देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, वो बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है, ये है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, हम सब बच्चे बाबा को क्या कहते, बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम एक रोज का बच्चा हूँ, मैं आठ रोज का बच्चा हूँ, मैं एक मास का बच्चा हूँ। हाँ, तो पहले तो जरूर छोटे ही होंगे ना, छोटे होते हैं, छोटा ही होगा, भल दो चार दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, ज्ञान में आए दो दिन का बच्चा कहला कहते हैं, पर ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। अब एकदम छोटे बच्चे को तो पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल नहीं भेजेंगे, चलो किंडरगार्टन में तीन चार साल का होगा जाएगा, तब तक छह साल पांच साल का न हो तब तक कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं जाएगा, तो छोटे बच्चों को थोड़ी पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए, जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े ते बड़े टीचर के पास बैठे हैं। शिव बाबा बड़े ते बड़ा टीचर, बड़े ते बड़ा बाप, हाँ, बड़े ते बड़ा सतगुरु, सब बड़े ते बड़ा, हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले सब। हाँ, बाबा कहते हैं नायब टीचर्स है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, क्लास कराते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो वो बाबा कहते हैं वो नायब टीचर्स है, तो ये सब टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं, ग्रुप लेकर के आते हैं ना मधुबन में, तो कहेंगे भाई कौन आपका पंडा, कौन है आपका गाइड, कौन है, कौन आपको लेकर के आया, तो सब पंडे हो गए। तो बाबा कहते हैं ये टीचर्स निकले जिनको पंडे कहते हैं, ये भी सबको पढ़ाती रहती है, जो जो जानते जाएंगे, हाँ, फिर वो पढ़ाते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे, पढ़ाते भी जाएंगे। पहले पहले तो समझाना ही है दो बाप का, ये सबसे पहले नयों को बताना है दो बाप, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है, तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं है, केवल हम बच्चों को मालूम है कि हमको पारलौकिक बाप मिला है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे, जानते जा रहे ना धीरे धीरे, इसलिए बाबा के बच्चों की वृद्धि होती जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेगी, शरीर छोड़ फिर ऊंच से ऊंच देवता बनेगी, ऊंच से ऊंच बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। किस लिए आए हो? ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हो। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं, इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। चाहे ज्ञान में संशय आया, हाँ, चाहे कोई तूफान ऐसा आया या काम महाशत्रु से हार खा ली, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन भी करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो, अबलाएं माताएं ही पुकारती है ना, पुरुषों ने ऐसे नहीं पुकारा, माताएं ही पुकारती है, इसलिए द्रौपदी का मिसाल है। तो बाप कहते कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो, कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, बस बाबा को याद करो, बाबा ऐसी सुरक्षा कर देगा जो बात मत पूछो। हाँ, मुझे याद आता है एक बहन ने अपना अनुभव सुना, एक बार क्लास में बताया था, तो वो पति उसको बहुत तंग करता था काम विकार के लिए, लेकिन वो दृढ़ थी कुछ भी हो जाए मैं विकार नहीं दूंगी। तो जो एक दो नवरात्रि आई तो नवरात्रि में वो व्रत रखता था, पूजा करता था, देवियों की पूजा करता था नवरात्रि में, तो 9 दिन तो इसको कुछ नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मचर्य में रहते हैं 9 दिन, तो इतना वो पूजा पाठ में बिजी रहा। और यहाँ ये बहन ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, जो एकदम बाबा की शक्ति उनको मिल गई 9 दिन तो पूरी की। और जब 9 दिन पूरा हुआ तो फिर आया पत्नी के पास, और उस समय जैसे उसको हाथ लगाने की कोशिश की, उसकी पत्नी से उनको काली का साक्षात्कार हो गया, काली साक्षात्कार हो गया, एकदम डर गया, डर गया। उसके बाद कहा भी तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो देखो उसने इतनी तपस्या की, बाबा को इतना याद किया, परंतु मौका मिल गया ना, क्योंकि पति भी तो नवरात्रि की पूजा कर रहा था, व्रत रखा, वो सब करता था, भक्ति मार्ग में तो करते ही हैं। तो देखो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, कोई भी विघ्न आए आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, तो सबसे अच्छा रास्ता है बाबा की याद में इतनी तपस्या करो, वो विघ्न हल्का हो जाएगा या वो मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं याद के सिवा और कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। माया अभी बलवान है लेकिन उसकी ताकत कम हो जाएगी और बाबा के बच्चों की ताकत बढ़ जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना भी बंद हो जाता है, फिर आकर के शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं, ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बाबा से बातें करो, हाँ बाबा से बातें करो, देखो बाबा कैसे शक्ति भरेगा, तो ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए हम शिव बाबा पास जाते हैं, वो इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं तो शिव बाबा के आगे बैठे हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं तो कैसे बाबा से इतनी करंट मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। बाबा ऐसे नहीं सबको गोद देते थे, कभी नहीं। बाबा तो पहले तो पक्के बच्चे चाहिए, पवित्र बच्चे चाहिए, फिर बाबा उनको कहते थे कि अपने को आत्मा समझ करके बाबा की गोद में आ, आत्मा समझ कर। देह अभिमान में अगर है तो बाबा की गोद, बाबा को उनसे जैसे वो बाबा दूर हो जाते थे, नहीं मिलते थे। तो बाबा कहते हैं आत्मा, तो आत्म अभिमानी भव, बाबा से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, ये है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है। यहाँ को वेद शास्त्र पढ़ने की मेहनत नहीं है, एक ही मेहनत है। कौन सी? सिर्फ याद की मेहनत। ये बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है, इसी में माया आती है, इसी में विघ्न आते हैं। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से मम्मा मम्मा निकलेगा। हाँ, बच्ची माँ को याद करेगी, बच्चा बाप को याद करेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी, बच्चा अक्षर अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है ना बच्चे बेटे को, थोड़ा नशा ज्यादा होता है कि पिता का वर्षा मुझे मिलेगा। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, कैसे? याद करने से। दे अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी, दे अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होंगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके, उनके साथ ही भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा प्यार था। बाबा कहते हैं तुम सब आशिक थे, भक्ति मार्ग में भी तुम आशिक थे, उस एक माशूक को याद करते थे। हाँ, तुम भक्ति मार्ग में भी तुम सब आशिक थे उस माशूक के, सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। अनजाने में भी लोग ईश्वर का नाम ले लेते हैं, है ना, बिल्कुल नास्तिक होगा ना वो भी, ओ गॉड, हे भगवान, हाँ ऐसे कह देगा, भले नास्तिक भी है, कोई कष्ट आया, कोई दुख आया, ओ गॉड, हे भगवान। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहेंगे, बाबा आशिक नहीं है, हम आशिक है उस एक माशूक के, वो माशूक है। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी है बहुत, भक्ति मार्ग में तो अभी भी एक बहुत आशिक है एक माशूक के, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूझते हैं, क्योंकि अनेकों को याद करते हैं। अब गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहे, एकदम सूत मुंझा दिया है, सबको भगवान कह दिया, सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके। अब कौन ठीक करेगा? वो खुद ही आकर के ठीक करेगा। एक व्यक्ति के लिए 10 बातें 10 लोग कहे, सब अलग अलग कहे, तो मनुष्य तो मुंझ ही जाएगा ना। अब ये कैसा व्यक्ति, एक बात वो कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, फिर कब उसको समझ में आएगी? जब वो खुद आकर के बताएगा मैं कैसा हूं, तो भगवान को भी समझ नहीं सके कौन है। तो जब तक भगवान खुद ना आए तब तक कैसे समझेंगे? तो बाबा कहते इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा के एकदम सूत मुंझा दिया है, तो सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत ही नहीं है जो इस सूत को सुलझा सके, इतना वो उलझ गया है सूत, ईश्वर कौन है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, वहां कभी अकाली मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी, सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, एक सेकंड लगता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, सब एक सेकंड में याद आ सकता है, क्योंकि कहानी तो मूल तो भारत की है, बाकी सब है बाई प्लॉट्स, जो और धर्म वाले वो तो झाड़ में बाद में आते हैं, सारी जो थुड़ है सारा वो तो भारत ही है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी सब है बाई प्लॉट्स एक्स्ट्रा, वो अलग अलग कहानियां है, परंतु जड़ तो फिर भी एक आदि सनातन देवी देवता धर्मी है। तो बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो, डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक, कहां राव थे कहां रंक बन गए। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य, सब मानते हैं। आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए, जैसे शिव बाबा के नाम है तो आप ब्रह्मा बाबा के भी कई नाम है, आदि देव ब्रह्मा, महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहा जाता है, हनुमान तो किसने कहा, हनुमान माना मन, जो हनुमान तो जो मान का हनन करे वो हनुमान, मान का हनन करे मन अभिमान को खत्म करे वो हनुमान। हनुमान को कोई अभिमान नहीं था, वो तो जहाँ राम कथा हुई वहां चरणों में जुतियों में बैठ जाता था, तो उनको अभिमान नहीं था, तब वो हनुमान बन सकता है जो अभिमान को तोड़े। तो बाबा कहते हैं महावीर हनुमान को भी कहते हैं, वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। केवल हनुमान के लिए गायन है कि उसने हृदय फाड़ के दिखाया कि मेरे हृदय में राम बसा हुआ है। तो बाबा कहते हैं तो क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते, तो महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो, पांच विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, हम सब बच्चे रावण पर जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं है, ये केवल एक राम की बात नहीं है, त्रेता वाला राम जिसने रावण को जीता, एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, सुना सब राम है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, सीता को पाने के लिए भी राम ने धनुष तोड़ा, वो तो शिव का धनुष था ना, तो शिव बाबा को याद करना है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात कौन सा धनुष, बाबा कहते अर्थात माया पर जीत पानी है, तो माया पर जीत पाना माना धनुष तोड़ना, इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई लगेगी, बाबा यवनों को याद करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो यवन हो गए, भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है, गाया भी हुआ है रक्त की नदियां बहती है, अंत में तो यही होगा ना, दूध की भी फिर नदियां बहेगी, और दूध की नदियां बहने का कौन सा गायन है, विष्णु को क्षीर सागर में लेटा हुआ, ये विष्णु को क्षीर सागर में लेटा हुआ ये दूध की नदियां हैं और रक्त की नदियां भी है, पर बाबा कहते हैं फिर रक्त की नदियों के बाद फिर दूध घी की नदियां बहेगी, ये भी भारत की कहानी है। तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। उनको फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। है एक ही विष्णु के दो रूप, है ना, लक्ष्मी नारायण दो रूप है विष्णु के। पारसनाथ पारसनाथनी वो है पशुपति नाथ पत्नी। हाँ, बाबा कई नाम देते हैं। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, है ना, वहां पर नेपाल में काठमांडू में है एक कुआं है और उसमें दिखा है विष्णु जी लेटा हुआ है, पशुपतिनाथ के नजदीक ही है तो विष्णु जी लेटे हुए हैं और उसमें चार भुजाएं वाले शंख चक्र गदा पदमदारी। तो जब ऐसा सब दिन आता है उसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं, वे दिखाते विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। तो बाबा कहते हैं उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं वो तालाब। अब लेक में या क्षीर में, क्षीर यानी दूध कहाँ से आया, कुएं में दूध कहाँ से आया, वो तो पानी आता है ना नीचे से, दूध कहाँ से आया। तो बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है, अर्थ कुछ भी नहीं, चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे, बाबा ने नया टाइटल दिया, तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना, तो बाबा का सब रूहानी तो हम भी सोशल वर्कर रूहानी। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय में नहीं आना चाहिए। संशय माना, अगर कोई भी बात में संशय आया इसका मतलब क्या है, ये माया का तूफान है, क्योंकि माया संशय दिलाती है, ये माया का तूफान है। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। सिंपल बात, एक ही दवाई है। 84 के चक्र को भी याद करना है तो बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई, पतित पावन ज्ञान का सागर, पतितों को पावन बनाते हैं और ज्ञान सागर माना 84 का चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, पावन भी बनाते हैं ज्ञान भी सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो 84 का चक्र तो चलता ही रहेगा, इनकी एंड है ही नहीं। एक 84 का चक्र पूरा हुआ फिर दूसरा चक्र चालू हुआ, एक नंबर से एक एक एक। हाँ, बाबा कहते इनकी एंड नहीं है। ये भी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बाबा कितना मीठा है, इतनी ज्ञान की गहरी बातें बताकर फिर बाबा कहते बाबा कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बापों का बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। बाबा उलहना देते ना, इतना बाबा से इतना कुछ मिलता है तो भी ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है, फारकती देना भी ड्रामा में नोंद है। पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे देते हैं, पढ़ाई छोड़ी, सेंटर पर आना बंद कर दिया, मुरली पढ़ना छोड़ दिया, माना फारकती दे दिया बाबा को, गोया फारकती दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं, जो अकलमंद बच्चे हैं वो सहज ही सब बातों को समझकर फिर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। अगर अकलमंद नहीं है तो छोड़ देंगे, पर अकलमंद है तो खुद भी पढ़ेंगे दूसरों को भी पढ़ाएंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे अकलमंद, क्या कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे ना, कई कहते ना जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे, हाँ ये डिग्री लो, वो डिग्री लो, वो डिग्री लो, पीछे ही पढ़ते हैं ना लौकिक परिवार वाले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बाबा कहते हैं फिर वो नाराज हो जाते हैं, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। अब बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। चलो पढ़ाई पढ़ भी ली, इतने डिग्रियां ले ली, फिर विनाश हुआ, खत्म, सब खत्म। तो कई आकर के पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करे। कहते इतनी पढ़ाई पढ़ ली, अभी आगे पढ़ना है, LLM करना है, हाँ फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, ये करना है, वो करे या ना करे। अब बाबा क्यों मना करेगा, ये तो आपके ऊपर है ना, दादियां भी क्यों मना करेगी, हम लोग भी क्यों मना करेंगे। ऐसे तो नहीं हम मना करें और कल वो कहेगा इसने मना किया इसीलिए। इसीलिए दादी कहती थी आपको जो मन में आए, आप जो समझते हो बाबा से पूछो। इसलिए कोई उस प्रकार का निर्णय भी नहीं लेते थे, क्योंकि उनके जीवन की बात है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, हाँ विनाश की जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। तीनों ही सेनाएं जल थल नभ, ये तीनों ही सेनाओं की तैयारी कितनी जोर शोर से हो रही है। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तो तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती है, हर सब कुछ बनाया है, चाहे तो अब भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार लड़ाई नहीं लग सकती है। क्यों नहीं लग सकती है, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है। हाँ भाई बच्चे तैयार नहीं है तो लड़ाई कैसे लगेगी। तो इसीलिए बाबा बच्चों से ही पूछते हैं बच्चे कब तक तैयार होंगे, कितनी देर चाहिए, कितना समय चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। तुमको तुम्हारे लिए राजाई स्थापन हो रही है तो तैयारी तो चाहिए ना उसके लिए। ये भी तैयारी करते रहते हैं, विनाश करने वाले भी तैयारी करते रहते और हम स्थापना करने वाले भी तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। बाबा ने बता दिया तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अंत में जब प्रभाव निकलेगा बाबा के बच्चों का तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला परमपार, आप आए लेकिन हमने पहचाना नहीं, ये अंत में कहेंगे। ये इसी समय का गायन है, ये भी गाया हुआ है। दूसरा गायन क्या है, तुम्हारी गत मत तुई जान, ईश्वर की गति करने की जो मत है वो बाबा ही जाने, कैसे दुनिया को बदलता है ये भगवान ही जाने। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है, अभी बाप तुमको श्री मत दे रहे हैं, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहां श्री मत और कहां मनुष्यों की मत, श्री मत है माम एकम याद करो और मन मत मनुष्य मत क्या, उनको याद करो उनको याद करो उनको याद करो, कितना अंतर है। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई दे न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मौखिक ड्रामा अनुसार स्थापन हो रही है। कैसे, सो आकर के समझो, बाबा कहते बोर्ड पर लिख दो ये। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे उनको क्या फल मिलेगा, जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वो नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए, है लिस्ट बनी हुई है। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर के बने, एकदम भट्टी में आकर के पड़े, हाँ दुनिया का मुंह नहीं देखा 14 साल, एकदम भट्टी में आकर के पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके, कोई भी आतंक फैलाने वाला आ न सके अंदर। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होना चाहिए, हाँ नए नाम उनको मिलने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया उन्होंने, सब देखो दादियों ने फट से सब कुछ छोड़ दिया, हाँ सरेंडर कर दिया, इसीलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे, कैसे कैसे वंडरफुल नाम, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ कितनी मधुर मुरली, कितनी गहरी मुरली, कितनी प्यारी मुरली, इसलिए आज भट्टी वालों का क्लास ही इस पर, इस टॉपिक पर है। अभी राजू भाई आके कराएंगे, क्योंकि मुरली पर उसका वैसे ही बहुत ही कमांड है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरा, अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वो सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। लॉ और लव का बैलेंस होगा। कभी भी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़, कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, जहाँ वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। उसके अंतर्गत आत्मा ही जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएगी। अहो आपका भाग्य, ओहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देगी। ओहो मेरा भाग्य तो त्याग कर देगी। मम्मा का महीना चल रहा है, आज 5 तारीख है, आज मम्मा की विशेषता है। देही अभिमानी के नेचुरल गुण द्वारा निर्भयता की शक्ति से संपन्न थी मम्मा। मम्मा ने देही अभिमानी रहने का बहुत गहरा अभ्यास किया। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, इस स्मृति ने मम्मा को निर्भय बना दिया। वे सदा शेरणी शक्ति बन करके रही, नया ज्ञान और सत्युगी दुनिया के लिए नई धारणाओं के कारण लोगों ने अनेक प्रकार के विघ्न डाले, विरोध किया, मम्मा ने निर्भय बनकर उन सब का सामना किया। कभी किसी से भयभीत नहीं हुई। तो बाबा कहते, बच्चे ऐसी निर्भयता की शक्ति आप बच्चे भी धारण करो, देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।